एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
नमस्कार और स्वागत है। कभी सोचा है कि हमें भूत प्रेत की कहानियां सुनने में या हॉरर फिल्में देखने में डर भी लगता है और मजा भी आता है? हम अंधेरे से डरते हैं पर अंधेरी कहानियों की तरफ खिंचते भी हैं। ये अजीब सा रिश्ता क्यों है?
ये कमाल का सवाल है, और इसी सवाल की तह तक जाने के लिए आज हम निक ग्रूम की किताब द गॉथिक अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे।
द गॉथिक?
हाँ, जब हम गॉथिक शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद काले कपड़े, डरावने महल और वैम्पायर।
बिल्कुल।
पर यह किताब बताती है कि ये सिर्फ एक फैशन या कहानी का स्टाइल नहीं, बल्कि हमारे समाज का एक छिपा हुआ अंधेरा पहलू है।
बिल्कुल, ये हमारी रोशन तर्क से भरी दुनिया का वो डार्क ट्विन है जो हमारी छुपी हुई इच्छाओं और डरों को आवाज देता है। और आज के डिजिटल युग में जहां हमारे डर भी नए हो गए हैं, इसे समझना और भी दिलचस्प हो जाता है।
सही कहा।
तो चलिए इस रहस्यमय दुनिया में एक गहरी छलांग लगाते हैं।
चलिए।
तो इस डरावने टूर पर हमारा गाइड कौन है? ये निक ग्रूम है कौन?
निक ग्रूम कोई मामूली प्रोफेसर नहीं है, वो ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर में अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, और उन्हें एक तरह से गॉथिक कल्चर का जासूस कह सकते हैं।
अच्छा।
उनकी खासियत ये है कि वो गॉथिक को सिर्फ 19वीं सदी की किताबों तक ही नहीं देखते।
मतलब वो सिर्फ ड्रैक्यूला और फ्रैंकेंस्टीन पर ही अटके नहीं है?
बिल्कुल नहीं, वो इसकी जड़ों तक जाते हैं, सदियों पुरानी जर्मनिक गॉथ जनजातियों तक जिन्हें बर्बर कहा जाता था। वहां से लेकर आज के गॉथ म्यूजिक और फैशन तक, वो आर्किटेक्चर, राजनीति, साहित्य, हर चीज में इसके निशान ढूंढ निकालते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि गॉथिक हमेशा से हमारी सभ्य तर्क वाली दुनिया का एक अंधेरा साथी क्यों रहा है।
तो ये किताब असल में गॉथिक की एक पूरी जन्म कुंडली है। ये सिर्फ ये नहीं बताती कि गॉथिक क्या है, बल्कि ये क्यों है और हमारे लिए आज भी इतना जरूरी क्यों है।
सही कहा। अब किताब के सबसे बड़े आइडिया पर आते हैं। ग्रूम कहते हैं कि गॉथिक कोई एक कहानी का प्रकार नहीं, बल्कि एक कल्चरल मोड है।
कल्चरल मोड, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ?
नहीं नहीं, इसका मतलब बहुत आसान है। सोचिए, आज मीम कल्चर एक मोड है, एक खास अंदाज में मजाक करने और बात करने का।
हाँ, सही बात है।
या 90 के दशक का बॉलीवुड एक अलग मोड था, वैसे ही गॉथिक भी डर, रहस्य और उन सभी बातों को जाहिर करने का एक सदियों पुराना मोड या स्टाइल है जिन्हें समाज दबाने की कोशिश करता है।
हमारे डर, हमारे अंधविश्वास।
हाँ, हमारे मन के अंधेरे कौन है?
वाह, मतलब ये सोचने और महसूस करने का एक पूरा तरीका है।
तो किताब हमें इसी मोड की कहानी बताती है।
हाँ, ये हमें एक सफर पर ले जाती है। ये सफर शुरू होता है उस जमाने से जब गॉथिक एक गाली हुआ करता था।
क्या बात कर रहे हैं?
हाँ, फिर ये आर्किटेक्चर और साहित्य का एक कूल स्टाइल बन गया, और आज ये हमारी फिल्मों, म्यूजिक, यहाँ तक कि वीडियो गेम्स में भी जिंदा है।
तो ये किताब उन लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि ये अंधेरा हमें इतना आकर्षित क्यों करता है।
बिल्कुल।
तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं।
ये बात जानकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि गॉथिक शब्द की शुरुआत एक गाली के तौर पर हुई थी।
है ना अजीब बात, किताब की शुरुआत इससे यही बताते हैं। पुनर्जागरण यानी रेनेसांस के दौर में जब सब लोग क्लासिकल आर्ट और तर्क की बातें कर रहे थे, तो उन्होंने मिडिल एज के आर्ट और आर्किटेक्चर को नीचा दिखाने के लिए उसे गॉथिक कहा। उनका मतलब था ये बर्बर है, असभ्य है, जंगली है।
अच्छा।
कुछ लोगों को इसी जंगलीपन में मजा आने लगा। हॉरिस वॉलपोल जैसे लोगों ने कहा, अरे ये नुकीले मेहराब, ये अंधेरे गलियारे, ये तो क्लासिकल स्टाइल से ज्यादा दिलचस्प है, इनमें कल्पना की आजादी है।
और उन्होंने सिर्फ सोचा ही नहीं, बल्कि इसी स्टाइल में अपना एक घर भी बना डाला, है ना? और फिर एक किताब भी लिख दी, द कासल ऑफ ओट्रेंटो।
और बस वहीं से साहित्यिक गॉथिक का जन्म हुआ। ग्रूम बताते हैं कि वॉलपोल ने एक नया फॉर्मूला इजाद कर दिया।
क्या था वो फॉर्मूला?
एक पुराना रहस्यमयी माहौल, भूत प्रेत, छुपे हुए राज, और उसे एक मॉडर्न नॉवेल के रूप में पेश कर दिया। ये फॉर्मूला इतना हिट हुआ कि आज तक चल रहा है।
तो ये तो हो गया डर का फॉर्मूला, पर इस फॉर्मूले में ऐसा क्या था जो लोगों को इतना पसंद आया? क्या सिर्फ खंडहर और भूत प्रेत ही काफी थे?
नहीं, सिर्फ उतना ही नहीं। ग्रूम एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट समझाते हैं, सबलाइम।
सबलाइम, इसका क्या मतलब है?
सोचिए आप किसी ऊंचे पहाड़ पर अकेले खड़े हैं और चारों तरफ बर्फीली चोटियां हैं। वो नजारा बेहद खूबसूरत है, पर साथ ही एक डर भी लगता है।
हाँ, कि आप कितने छोटे हैं और ये कुदरत कितनी विशाल और खतरनाक हो सकती है।
बिल्कुल, सुंदरता और डर का यही कॉकटेल सबलाइम है। गॉथिक लेखक अपनी कहानियों में इसी एहसास को जगाना चाहते थे।
समझ गई, वो सिर्फ डराना नहीं चाहते थे बल्कि हमें हैरान भी करना चाहते थे। पर एक मिनट, क्या हर तरह का डर एक जैसा होता है? मतलब किसी चीज का सस्पेंस महसूस करना और खून खराबा देखकर डरना, ये तो अलग अलग बातें हैं।
बहुत अच्छा सवाल है और ग्रूम इसका जवाब भी देते हैं। वो बताते हैं कि गॉथिक में डर के भी दो फ्लेवर थे।
अच्छा,
एक था टेरर गॉथिक, ये मनोवैज्ञानिक डर था, अंधेरे में किसी के होने का शक, परछाइयां, अनजाना खौफ, और दूसरा था हॉरर गॉथिक, जिसमें खून खराबा, हिंसा और भूत प्रेतों को खुलकर दिखाया जाता था।
तो एक में डर दिमाग में बनता है और दूसरे में आंखों के सामने होता है।
बिल्कुल सही।
तो ये गॉथिक स्टाइल इंग्लैंड में तो सुपरहिट हो गया, क्या ये बाकी दुनिया में भी फैला?
ये तो ग्लोबल हो गया। जैसे ही ये फॉर्मूला बना, हर देश ने इसे अपने अपने डरों को बताने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जर्मनी में ये वहां की लोक कथाओं और जादुई कहानियों से जुड़ गया।
और अमेरिका में, वहां तो कोई पुराने महल नहीं थे।
अमेरिका में गॉथिक ने एक नया रूप लिया। वहां का डर था वहां की विशाल अनछुई जंगली प्रकृति और समाज का सबसे बड़ा पाप, गुलामी।
ओह, ये तो बहुत गहरा है।
अमेरिकी गॉथिक कहानियों में पुरखों के पाप आज की पीढ़ी को परेशान करते हैं, और इसी दौर में हमें साहित्य के दो सबसे बड़े मॉन्स्टर मिले, फ्रैंकस्टीन का मॉन्स्टर और ड्रैकुला।
हाँ, और ये सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं थे, है ना? किताब बताती है कि ये अपने समय के समाज का आईना थे।
बिल्कुल, फ्रैंकस्टीन का मॉन्स्टर विज्ञान के बेकाबू हो जाने के डर को दिखाता है। ये सवाल पूछता है कि क्या इंसान को भगवान बनने की कोशिश करनी चाहिए? और ड्रैकुला, वो पूर्वी यूरोप से आया एक बाहरी आदमी है जो लंदन के सभ्य समाज में आकर उसे भ्रष्ट करता है। वो उस दौर के विदेशी लोगों से डर और नस्लवाद का प्रतीक था।
मतलब ये मॉन्स्टर हमें बताते हैं कि समाज उस वक्त किस चीज से सबसे ज्यादा डरता था।
एकदम सही।
तो डर पहले पुराने महलों में था, फिर पूरी दुनिया में फैल गया। इसके बाद डर ने कौन सा नया ठिकाना ढूंढा?
इसके बाद डर ने सबसे डरावना ठिकाना ढूंढा, हमारा अपना शहर और हमारा अपना मन।
ओहो,
विक्टोरियन युग में गॉथिक महलों से निकलकर लंदन की धुंध भरी गलियों ना आ गया। अब हॉरर किसी दूरदराज के खंडहर में नहीं बल्कि हमारे बगल वाले घर में हो सकता था।
आप डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइट की बात कर रहे हैं?
बिल्कुल, वो कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। असली मॉन्स्टर कोई भूत या वैम्पायर नहीं बल्कि हमारे ही अंदर छिपा जानवर है, वो सभ्य इंसान का नकाब जो रात होते ही उतर जाता है।
डर अब बाहरी नहीं बल्कि पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक हो गया था।
हाँ, यह समाज का सच था जो बाहर से बहुत सभ्य और अनुशासित दिखता था पर अंदर बहुत सी इच्छाएं और अंधेरा दबाए हुए था।
ये बात तो आज भी कितनी सच लगती है। हम सबकी एक सोशल मीडिया वाली परफेक्ट साइड होती है और एक वो साइड जो हम दुनिया से छुपाते हैं।
यही तो गॉथिक की खूबी है। और आज गॉथिक कहाँ है? ग्रूम कहते हैं कि ये कहीं गया नहीं बल्कि और भी ज्यादा फैल गया है।
कहाँ?
ये हॉरर फिल्मों में है, टिम बर्टन की फिल्मों के स्टाइल में है, गॉथ रॉक म्यूजिक में है, वीडियो गेम्स में है,
और हमारी मॉडर्न चिंताओं में भी। जैसे ब्लैक मिरर जैसा शो, वो तो एक तरह का डिजिटल गॉथिक ही है।
बिल्कुल,
उसमें भूत प्रेत नहीं है पर टेक्नोलॉजी का डर है, पहचान खोने का डर है, सोशल मीडिया का डर है। लगता है गॉथिक का पुराना महल अब हमारा स्मार्टफोन बन गया है।
क्या बात कही।
वाह, इस पूरी बातचीत से जो बड़े विचार निकल कर आ रहे हैं वे कमाल के हैं। पहला तो ये कि गॉथिक हमेशा रोशनी और तर्क का दूसरा पहलू रहा है। ये समाज की तरक्की की कहानी का वो अंधेरा चैप्टर है जिसे हम पढ़ना नहीं चाहते पर जो हमेशा मौजूद रहता है।
हाँ, जैसे हम आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरक्की का जश्न मना रहे हैं तो वहीं गॉथिक फिल्में और कहानियां पूछ रही हैं, अगर ये AI बेकाबू हो गया तो।
सही, ये हमेशा सिक्के का दूसरा पहलू दिखाता है।
दूसरा बड़ा आइडिया, अतीत कभी मरता नहीं, वो वर्तमान को परेशान करता रहता है। गॉथिक कहानियों में ये पुराने श्राप या हवेली के राज की शक्ल में आता है, लेकिन असल जिंदगी में ये हमारे समाज के ऐतिहासिक विवाद हैं, पुरानी गलतियां हैं जो आज भी हमारी राजनीति और रिश्तों पर असर डालती हैं।
ये तो बहुत गहरी बात है। और तीसरा आइडिया है सीमाओं को तोड़ना। गॉथिक हमेशा उन लाइनों को धुंधला करने के बारे में रहा है जो हमने खींच रखी हैं सही और गलत के बीच, समझदारी और पागलपन के बीच,
यहाँ तक कि जिंदगी और मौत के बीच। ये हमें समाज के उन टैबूज से मिलवाता है जिन पर बात करने से हम डरते हैं।
और आखिर में जो बात मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, राक्षस सिर्फ राक्षस नहीं होते, वे समाज का आईना होते हैं। जब हम किसी कहानी में ज़ॉम्बी देखते हैं तो शायद वो किसी महामारी के डर को नहीं बल्कि अपनी पहचान खोकर भीड़ का हिस्सा बन जाने के डर को दिखा रहे होते हैं।
बिल्कुल, ये हमें सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि जिसे हम मॉन्स्टर या दूसरा कह रहे हैं, कहीं वो हमारे अपने ही किसी डर या पूर्वाग्रह का चेहरा तो नहीं है।
किताब में कुछ विचार इतने दमदार हैं कि वो दिमाग में अटक जाते हैं। जैसे एक आइडिया है, गॉथिक को कभी इससे नहीं पहचाना गया कि वो क्या था, बल्कि हमेशा इससे पहचाना गया कि वो क्या नहीं था।
मतलब?
वो क्लासिकल नहीं था, वो तर्कसंगत नहीं था। उसकी शुरुआत एक अपमान के तौर पर हुई और वो एक स्टाइल बन गया।
मतलब इसकी पूरी पहचान ही बगावत पे टिकी है। इसने हमेशा खुद को मेनस्ट्रीम के खिलाफ खड़ा किया। एक और कमाल का विचार है, गॉथिक उपन्यासों में राक्षस समाज की चिंताओं का थर्मामीटर होते हैं।
थर्मामीटर?
हाँ, वो बताते हैं कि उस दौर का समाज किस बात से सबसे ज्यादा डर रहा था।
ये दिखाता है कि ये कहानियां सिर्फ टाइम पास नहीं है बल्कि अपने समय का एक्सरे है। और एक तीसरा विचार जो सच में थोड़ा डरावना है,
वो क्या है?
गॉथिक का असली डर किसी भूत या प्रेत में नहीं बल्कि सीमाओं के टूटने में है, जब जीवन और मृत्यु, समझदारी और पागलपन के बीच की लकीर मिटने लगती है।
बिल्कुल, जब हमें यही ना पता चले कि क्या सच है और क्या वहम, असली डर तो वहीं से शुरू होता है। गॉथिक इसी अनिश्चितता को एक तरह से सेलिब्रेट करता है।
तो ये सब ज्ञान की बातें तो हो गईं, लेकिन इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना?
देखिए, सबसे पहले तो ये हमें मीडिया को ज्यादा स्मार्ट तरीके से देखने में मदद करता है।
हाँ।
अगली बार जब कोई हॉरर फिल्म देखें तो सिर्फ डरने के बजाय ये सोचें, ये फिल्म आज के समाज के किस डर को भुनाने की कोशिश कर रही है।
सही है। दूसरा, ये हमें राजनीतिक और सामाजिक भाषा को समझने में मदद करता है। जब कोई नेता किसी समुदाय को खतरा या बर्बर बताकर पेश करता है तो वो असल में एक क्लासिक गॉथिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहा होता है, एक राक्षस गढ़ने की। अगर हम इस पैटर्न को पहचान लें तो हम प्रोपेगेंडा से बच सकते हैं।
और सबसे जरूरी, ये हमें खुद को बेहतर समझने में मदद करता है। हम सबके अंदर एक मिस्टर हाइड छिपा होता है, एक शैडो सेल्फ जिसे हम दुनिया को नहीं दिखाते।
बिल्कुल।
गॉथिक हमें अपने उस अंधेरे पहलू से भागने के बजाय उसे स्वीकार करने और समझने का मौका देता है।
तो इस किताब से मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि गॉथिक सिर्फ डरावनी कहानियों का एक डिब्बा नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति का एक सेफ्टी वॉल्व है। ये वो जगह है जहां हम उन डरों और सच्चाइयों का सामना करते हैं जिनसे हम अपनी सभ्य जिंदगी में भागते हैं।
और मेरे लिए सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि ये कितना लचीला और जिंदा है। ये 250 साल पहले महलों में शुरू हुआ और आज हमारे स्मार्टफोन तक पहुंच गया है।
सच में
ये साबित करता है कि इंसान को हमेशा एक ऐसी जगह की जरूरत होती है जहां वो तर्क की दुनिया से परे जाकर अपने डर और कल्पनाओं का सामना कर सके।
जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, आज की इस डिजिटल दुनिया में हमारे नए गॉथिक राक्षस कौन है? क्या वो बेकाबू होती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सोशल मीडिया के अदृश्य भूत हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ को खा रहे हैं, या कुछ और? इस पर सोचिएगा जरूर।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।